मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लेवे।
नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायानम, नमो लोए सव्यसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्द्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मंगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।
आत्मानुशासन ग्रंथ का मंगलाचरण करेंगे।
जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार, ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार। हे आत्मन तू दुख से डरता, अरु सुख की वांछा करता, इसीलिए मैं दुख हारी अरु सुखकारी रचना करता। मधुर विपाकी उपदेशामृत यह यदि कटु भी भासित हो, कटु औषधि ग्राहक रोगी बत किंचित तू भयभीत न हो।
जी, आत्मानुशासन ग्रंथ अपना चल रहा है, जिसमें गाथा नंबर 52 अपन यहां पर लेंगे। गाथा का पाठ करते हैं।
स्वो यस्य जनीयस एव दिव्यतो ह्यस्तस्य संपद्यते, स्थैर्यं नाम्ना कस्यचित् जगदिदं कालनीलोन्मूलितम्। भ्रान्तर्भ्रान्ति पास्य पश्यसि तरां प्रत्यक्षमक्षोर्न किम्। एनात्रैव मुहुर्मुहुर् बहुतरं वृद्धस्प्रहो वास्यसि भ्रमसि। जिसका होने बाला कल है उसका होता बीता काल, काल पवन से मूल विहीन जगत में कुछ भी नहीं त्रिकाल। हे भाई भ्रम तज अपनी आँखों से देखो भली प्रकार, क्यों भ्रमते हो नश्वर विषयों की बांछा कर बारंबार।
जी, अब यहाँ पर जगत में जो नश्वर पदार्थ है उनमें हम भ्रम, उनमें अपनापन करके जो भ्रमण कर रहे हैं उसका यहाँ पर आचार्य देव निषेध करते हैं, समझाते हैं कि क्यों हम उनमें अपनापन कर रहे हैं और संसार में भ्रमण कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं जगत की क्षणभंगुरता। जगत में सब नश्वर है, सब नश्वर है। हा? अच्छा, आत्मा के सिवाय सब नश्वर है, बराबर। हा? जी बराबर। देखो, सभी ने अस्तित्व गुण पढ़ा है, सबने अस्तित्व गुण पढ़ा है, तो नश्वर क्या है फिर? नश्वर अवस्था है, पर्याय है, बदलती रहेगी, बराबर। लेकिन द्रव्य का कुछ होने वाला है? अपना तो नहीं होने वाला भाई साहब, अपना नहीं होने वाला, दूसरे का कुछ होने वाला है? ना अपना कुछ होने वाला है, ना दूसरे का कुछ होने वाला, ना मैं नाश होने वाला हूं, ना दूसरा द्रव्य नाश होने वाला है। क्या करना है? बस अपनी मान्यता सुधारना है। क्या? जिसकी पर्याय या जो शरीर है, पुद्गल है, वो अपने स्वभाव रूप परिणमन करता है। पुद्गल मतलब जो पुद्गल परमाणु हैं, वो मिल मिलकर स्कंद बन जाते हैं, और जब स्कंद स्कंद मिलकर ये शरीर रूप बन जाता है, है ना। तो ये शरीर भी क्या है, पुद्गल ही है, वो अपना कार्य करता है, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये शरीर ही मैं हूं, ये शरीर मेरा है, और यहां से जो मिथ्या मान्यता शुरू होती है तो उसमें अपनापन करते 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 इतना अपनापन कर लेते हैं कि जो सत्य है, सत स्वभावी है, कौन, मैं, उसे हम भूल जाते हैं। तो ऐसा यहां पर दोनों द्रव्य की भिन्नता बताते हुए ये बताना चाह रहे हैं कि जगत में मैं और सभी पदार्थ ज्यों के त्यों रहने वाले हैं, लेकिन हमें अपने स्वभाव को जानकर और पर में अपनापन करना छोड़ना है, बराबर। क्यों उनमें अपनापन करते हैं, क्योंकि उन्हें हमने, उन पर पदार्थों को हमने अच्छा माना, बुरा माना, मेरा माना, और मेरा नहीं माना तो तेरा माना, क्या, या तो मेरा मानेंगे, जो मेरा है वो मेरा है, ये सब मेरा, और बाकी जो मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, जो मेरे लायक क्या नहीं, तो वो तेरे। तो हम जगत में क्या करते हैं, तेरा मेरा अच्छा बुरा, इन्हीं को और अच्छी हिंदी भाषा में बोलें तो मोह राग द्वेष, बराबर। मोह में तेरा मेरा आ गया, अच्छा बुरा, राग और द्वेष। तो यहां पर आचार्य देव जो हमारी मान्यता है पर पदार्थ में अपनेपन की, उसे यहां पर छुटवाना चाहते हैं। देखिए पहले प्रस्तावना पढ़ते हैं, क्या लिखे हैं, जो जगत की क्षणभंगुरता को नहीं देखता, उसे भोगों की अभिलाषा होती है, यह बात आगामी छंद में कहते हैं। मतलब इस छंद में 52 नंबर के छंद में यहां पर आचार्य देव कहते हैं। अपन थोड़ा पढ़ते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं। हे भाई, तू भ्रम छोड़, क्या तुझे आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। सबसे पहले थोड़ा आगे वाले शब्दों को समझते हैं फिर पीछे। हे भाई, तू भ्रम छोड़, मैंने कहा ना कि आचार्य देव क्या कह रहे हैं, इसका नाश हो गया, उसका नाश हो गया, ये हो गया, वो बराबर, लेकिन सबसे पहले छोड़ने लायक कार्य क्या है भैया, भ्रम छोड़ने लायक है। क्या भ्रम छोड़ने लायक है, कि मैं शुद्धात्म तत्व हूं और जो शरीर आदि है वो सब पर है, वो सब मैं नहीं हूं, फिर भले ही उसका कुछ भी हो। और फिर जहां देह अपनो नहीं, आगे ताहन अपनो कोई, और घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन लोए, बराबर। जब देह को ही अपना मानना छोड़ दिया, देह में ही अपनापन करना छोड़ दिया, तो फिर पर पदार्थ तो मेरे, देह भी पर है लेकिन और भी जो संयोग सामग्री है वो तो मेरी हो ही नहीं सकती, बराबर। देखो यहां पे कहा, हे भाई तू भ्रम छोड़, क्या तुझे आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। आप सभी के लिए प्रश्न है, क्या आंख से प्रत्यक्ष दिखाई देता है, बोलो, ज्ञान तो नहीं, यहां तो लिखा आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। सुनो सुनो, वहां पे जो प्रत्यक्ष और परोक्ष की चर्चा है, तो वहां पे तो क्या कहा, आद्य परोक्षम और प्रत्यक्षम अन्यत, आगे के दो ज्ञान प्रत्यक्ष, आगे के दो ज्ञान परोक्ष है, आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत। तो आगे के दो ज्ञान कौन कौन से, मति और श्रुत। तो अपन सबको कौन सा है? कोई ऐसा तो नहीं ना जिसको अब्धि, अब्धि तक ही हो सकता है, मना पड़े तो मुनिराजों को, और केवल ज्ञान तो सिर्फ केवलियों को, बराबर। यदि वायदव्य होना भी चाहे तो अवधि ज्ञान हो सकता है। अच्छा, किन किन को होता है अवधि ज्ञान? नारकी और देव को तो होता ही है ना, और फिर होना चाहे तो मनुष्य और तिर्यंश को भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अपन यहां पे समझे तो क्या कि जो दो ज्ञान हैं, मति और श्रुत, तो वो तो कैसे हैं? परोक्ष है। और यहां पर क्या लिखा? क्या आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता? तो सुनना, न्याय के ग्रंथ में जैसे आप सभी के मन में प्रश्न हो रहे हैं ना कि क्यों प्रत्यक्ष लिखा, क्यों प्रत्यक्ष लिखा, है तो परोक्ष। तो ऐसे ही वहां पे भी प्रश्न किया गया कि भाई इसको प्रत्यक्ष क्यों कहते हो? आंख से दिख रहा है, आंख से प्रत्यक्ष दिख रहा है, जबकि आंख तो इंद्रिय है और इंद्रिय के ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं, बराबर। इंद्रिय के निमित्त से हुआ ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो उसके लिए एक शब्द आचार्यों ने कहा, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। क्या? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, व्यवहार से इसे, साम व्यवहार मतलब लोक में व्यवहार से इसे प्रत्यक्ष कहते हैं। हाँ, कहीं आग लगी थी और कोई कहे मैंने तो बिल्कुल प्रत्यक्ष देखे आया भाई साहब, वहां पे बहुत ज्यादा आग लगी थी और ये हो रहा था वो हो रहा था, तो वो बोले प्रत्यक्ष। लेकिन वो प्रत्यक्ष कौन सा है? साम व्यवहारिक, लोक व्यवहार चलाने के लिए उसे प्रत्यक्ष कह दिया, बराबर। यहां पे भी वही है कि, लेकिन कैसा? क्या तुझे आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता? क्या नहीं दिखाई देता? कि जगत काल रूपी पवन के द्वारा निर्मूल किया जाता है। क्या? कि काल रूपी पवन के द्वारा जगत में जितने भी पदार्थ है सब कैसे हो जाते हैं? निर्मूल मतलब सभी की जो क्या बोलते वैल्यू है वो चली जाती है, सबका जो टाइम, जितने टाइम तक वह संयोग सामग्री रहने वाली है उतने समय तक रहती है, और फिर उसका क्या हो जाता है? पूर्ण गलन स्वभाव है। हाँ, कभी बन जाता है कभी बिगड़ जाता है, ये तो पुद्गल का स्वभाव है। यहां कोई रंच मात्र भी स्थिर नहीं है, बराबर। जगत में जो संयोग सामग्री है वह रंच मात्र भी स्थिर नहीं है। देखो, जे दिवस प्रातः उदित होता है वही अस्त को प्राप्त होता है, बराबर। जो दिवस उदित हुआ है वह धीरे धीरे अस्त को प्राप्त होने वाला है। यहां पर आचार्य देव ये सब बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने इन सब पर पदार्थों में ही अपनापन किया है, भूला है स्वयं आत्मा को जो भुलाने के काबिल नहीं है, आत्मन आया अवसर सुनहरा चूक जाने के काबिल नहीं है। क्या? हमने किसको भुलाया? कोई दूसरे को नहीं, अपने आप को भुलाया। लेकिन बहुत बहुत मुश्किल से यह नरभव मिला, उत्तम कुल मिला, जैन कुल मिला, उत्तम शरीर मिला, सब कुछ मिला, लेकिन यदि ये सब पाकर भी अपने आत्म स्वरूप को नहीं ध्याया तो समझना रेगिस्तान की कड़कती धूप में घूम रहे थे और पैरों में चप्पल भी नहीं थी तो पैर भी जल रहे थे और प्यास भी लगी हुई थी और बहुत मुश्किल से एक गिलास पानी मिल गया, तो क्या किया, बोले पैर बहुत तेज जल रहे हैं, प्यास तो लगी है लेकिन पैर बहुत जल रहे हैं, इसलिए क्या किया, वो पूरा पानी को पैरों में डाल दिया। बताओ क्या किया, सही किया, पैरों में डाला तो सही किया, नहीं किया ना। तो वैसे ही हमको भी तो सब कुछ मिला, सच्चे देव सास गुरु उनका स्वरूप समझने को मिला, उनके द्वारा जो बताया गया बीत राग धर्म वह समझने को मिला, सब कुछ मिला। और लेकिन यदि हमने अपने आत्म स्वरूप को नहीं जाना, जो जिनेंद्र भगवान द्वारा प्ररूपित मार्ग है उस पर नहीं चले, तो समझना हमने भी अपना ये नरभव वैसे ही, नरभव में जो समय मिला इतना टाइम मिला और उसे वैसे ही गवा दिया जैसे उस व्यक्ति ने अपनी प्यास ना बुझाकर वह पानी पैरों पर डाल दिया, व्यर्थ कर दिया। वैसे ही हम अपने जीवन व्यर्थ ना करें, इसलिए यहाँ पर आचार्य देव हम सभी को समझाते हैं कि भाई जो भी संयोग सामग्री मिली है वह सब कैसी है। वो आता ना, अकबर ने बीरबल से कहा कि कोई ऐसी बात बताओ कि जिससे मैं, जिसको सुनकर मैं सुखी हूं तो दुख हो जाए और दुखी हूं तो सुख हो जाए। कौन सी बात, ये भी बीत जाने वाला है, ये समय भी बीत जाने वाला है। क्या हम लोग कुछ संयोग सामग्री मिले और उसमें फूल जाते हैं, फूल जाते हैं मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब बस हम हैं तो अब कोई है ही नहीं। अरे लेकिन भैया विचार करना कि ये भी बीत जाने वाला है। कहां सती सीता जो राजा के घर जन्मी, राजा के घर ब्याही, मतलब उनकी शादी भी राजा के घर हुई, राजा से हुई, लेकिन समय कैसा आया कि जब बिल्कुल मतलब अच्छे से रहना चाहिए, भाई वो गर्भवती हैं तो कहां पर रही, वन जंगल में भटकती रही। लेकिन फिर भी आप देखो, फिर भी उन्होंने अपने धर्म को, अपने पंच परमेष्टि के स्मरण को नहीं त्यागा। तो धीरे धीरे ये सब हमें प्रथमानुयोग इत्यादि ग्रंथ पढ़कर, उनका विचार करके ये विचार करना चाहिए कि हम सब भी कैसे धर्म मार्ग पर लगें। आचार्य देव यहां पर यही समझा रहे हैं कि भाई जो भी संयोग है उसका वियोग होना निश्चित है। वो कहते हैं ना, जो संयोग हुआ है वो अपना वियोग का टाइम लिखवा कर आया है। जिसका संयोग हुआ है वो सब वियोग होने वाला है, तो फिर हम उनमें अपनापन क्यों करें। क्या जावे सो मेरा नहीं और मेरा सो जावे नहीं, जो मेरा स्वभाव है उसका कभी भी अभाव नहीं होने वाला। और बाकी जितने भी विभाव हैं, विभाव मतलब समझा रहा ना, हम क्या कर रहे हैं उन सब में, विभाव कर रहे हैं, राग कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, अच्छा बुरा मान रहे हैं, तेरा मेरा मान रहे हैं, विभाव का कभी सद्भाव रहता नहीं, बराबर। विभाव का कभी ना कभी तो अभाव होना ही है। कैसे पता विभाव का अभाव हो जाएगा, कैसे पता बोलो ना, जितने, अरे जितने भी सिद्ध भगवान हुए हैं उन सब ने विभाव का अभाव किया क्या नहीं, और स्वभाव का, उनके भी स्वभाव का सद्भाव था, अपने भी स्वभाव का सद्भाव है, बराबर। स्वभाव का सद्भाव तो है लेकिन उसमें अपनापन नहीं है, और जब स्वभाव में अपनापन नहीं है तो विभाव में अपनापन है, राग द्वेष मोह करते हैं और पर पदार्थ में अपनापन करते हैं, ऐसी मान्यता को छोड़ने के लिए यहाँ पर आचार्य देव समझा रहे हैं कि जो दिवस उदित होता है वही अस्त को प्राप्त होता है, इसलिए तू बारंबार जगत की आशा रखकर भ्रमण क्यों करता है। बराबर, जगत की आशा रखकर भ्रमण क्यों करता है, मतलब यहां पर आचार्य देव कह रहे हैं कि जो जगत में पर पदार्थ हैं वो सब कैसे हैं, संयोग मात्र है, और कब कैसे कर्म का उदय आए तो कब वियोग हो जाए इसका भी कुछ पता ठिकाना नहीं। तो क्या करना चाहिए, जैसे बने वैसे, जो हमेशा रहने वाला अपना आत्म स्वभाव उसमें अपनापन करना चाहिए। जगत, यहां पे लिखा ना कि वही अस्त होता है, इसलिए तू जगत की आशा रखकर भ्रमण क्यों करता है, जगत की आशा रखकर भ्रमण क्यों करता है, इसी बात को आचार्य उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ में सातवें अध्याय का 12वां सूत्र है उसमें कहते हैं कि ये जो जगत है ना, जगत और शरीर दो है क्या, यह तो पूरा जगत है उनमें अपनापन करते हैं, और चलो ठीक है उनमें अपनापन करना छोड़ भी दे तो किसमें अपनापन करते हैं, शरीर में अपनापन करते हैं। लेकिन आचार्य देव कहते हैं, आचार्य उमा स्वामी, कि जगत काय स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम, जगत और काय का स्वभाव संवेग के लिए है और वैराग्य के लिए है। संवेग मतलब मैं समझाता हूं, लेकिन पहले समझाएगा किसका स्वभाव, जगत का और काय का। जगत मतलब पूरा देश, पूरे संयोग सब, और काय मतलब शरीर। अब इनका स्वभाव जो है ना कैसा है, बनने और बिछुड़ने वाला है, कब बन जाए कब बिछुड़ जाए किसको पता। बराबर, तो इनको समझकर क्या समझना चाहिए, संवेग। संवेग मतलब अपने धर्म अपने स्वभाव में उत्साही बनना चाहिए, क्या जैसे बने वैसे हमें अपने धर्म को समझने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए, और संवेग का ही अर्थ बता रहा हूं, धर्म में उत्साही बनना चाहिए और संसार से भय लगना चाहिए, हाँ भयभीत होना चाहिए, संसार से डरना चाहिए। अरे ये पंचेंद्री के विषय, इनमें यदि मैं पड़ा रहा तो ये मनुष्य भाव भी ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा, और फिर से वही 484,00,000 योनियों में भटकना, और भटकना मतलब बहुत बहुत दुख सहना। बराबर, वैसे तो आप सभी ने अपने बाहर में ही स्वाध्याय भवन मंदिर के बाहर में जो चित्रपटल है उसमें संसार का स्वरूप लिखा ही हुआ है, सबने पढ़ा है। बराबर, तो जगत और काय, संसार और काय का स्वरूप संवेग के लिए है और वैराग्यार्थम, वैराग्य को बढ़ाने के लिए है, कि कैसे हम अपने वैराग्य को बढ़ाएं। वैराग्य मतलब क्या, कि राग द्वेष का अभाव होना। बराबर, राग द्वेष का अभाव होना ये तो नास्ती परक है कि भाई ठीक है इसका अभाव हो जाए उसका अभाव हो जाए, राग का अभाव द्वेष का अभाव मोह का अभाव, तो अभाव हुआ मतलब नास्ती परक। लेकिन किसी का सद्भाव भी तो होगा, बोलो अंकल जी, हाँ किसी का सद्भाव भी तो होना चाहिए ना, अभाव अभाव ठीक है, लेकिन सद्भाव किसका, अपने का, अपने आत्मा का, अपने स्वभाव का, अपने में अपनापन। तो वैराग्य किसे कहेंगे, अपने में अपनापन आना, अपने आत्म स्वभाव का चिंतन मनन श्रद्धान ज्ञान आचरण होना, वह वैराग्य है। बराबर। तो ऐसे जगत और काय का स्वरूप जानना, स्वरूप नहीं जानना ऐसा नहीं कहा, क्या ठीक है जानने में आए तो जानने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जानकर ये मैं नहीं हूं, बराबर, ऐसा श्रद्धान करना जानने में आएगा, क्योंकि हम हमारा स्वभाव ही जानना देखना है, स्वभाव के अनुसार जानने में आए, लेकिन उनमें अपनापन करना क्या कहलाएगा, बोलो, मिथ्यात्व, और स्व में अपनापन करना सम्यक, हाँ? क्या मोक्ष मार्ग क्या है, बोलो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो हमें किसकी ओर बढ़ना है, अपने मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करना है या संसार के मार्ग को प्रशस्त करना है, हाँ? संसार का मार्ग कौन सा है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, संसार मार्ग, हाँ? और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग, बराबर। इसलिए क्या करना क्या नहीं करना, शांति से बैठकर विचार करना, है ना। देखो अभी इसका अपन भावार्थ यहां पर पढ़ते हैं। इस संसार का चरित्र क्षण भंगुर है, बराबर। इस संसार में जितने भी पदार्थ है, संयोग है, सामग्री है, वो सब क्षण भंगुर है। जो पर्याय उत्पन्न होती है उसका नाश होता है, बराबर। जो भी पर्याय उत्पन्न हुई है उन सब का नाश होने वाला है। पर्याय किसे कहते हैं, हाँ जी, गुणों के विशेष कार्य को, बराबर, और गुणों के परिणमन को क्या कहते हैं, पर्याय, या परिणमन को ही क्या कहा जाता है, पर्याय। जब पर्याय उत्पन्न हुई है तो उसका नाश भी होने वाला है। यदि हम उनमें अपनापन करेंगे, जो पर्याय उत्पन्न हुई है यदि हम उनमें अपनापन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, पर्याय का तो नाश होने वाला है, और उसमें अपनापन कर लिए तो हाँ अपना भी नाश हो जाएगा। जयेश भाई जी, बराबर ना। इसलिए ना अपना नाश कभी होने वाला है, ना छहों द्रव्यों में से किसी द्रव्य का नाश होने वाला है, सब ज्यों के त्यों रहने वाले हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि अपनी मान्यता सुधारना है, और जब मान्यता सुधरेगी तो जो ज्ञान है, जितना ज्ञान है वह भी सुधरेगा, और स्वरूपा चरण चारित्र से लेकर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते क्या होगा, यथाख्यात चारित्र, और यथाख्यात चारित्र के बाद बोलो, अभी पढ़ रहे थे ना गुणस्थान, हाँ, केवल ज्ञान उस, और फिर मोक्ष की प्राप्ति, बराबर। देखो सबसे पहले विचार करना कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, बराबर, क्योंकि हम हमेशा शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले परिजन, संयोग, इनमें अपनापन करके और निरंतर पाप करते जाते हैं, बराबर। पाप क्यों करते हैं, कभी विचार किया कि मुझे आत्मा के लिए ये पाप करना है या ये पाप मेरा होगा, क्या आत्मा के लिए कभी भी, पर में अपनापन करने की ही जरूरत नहीं है तो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह कैसे होगा। जो भी हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह होता है वो सब परलक्ष, लेकिन कौन सा परलक्ष, शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले पर पदार्थ, इनके लिए। लेकिन विचार करना क्या ये शरीर धरा का, धरा मतलब पृथ्वी, धरा का धरा पे धरा रह जाएगा, बराबर, मतलब पृथ्वी का है, मिट्टी का है ना, पढ़ते ना, अरे जिया जग धोके की टाठी, झूठा उद्यम लोग करते है, आँखिन बांधी पाठी। मतलब क्या कि जो भी हम उद्यम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, कि ये शरीर अच्छा हो जाए, लेकिन इस शरीर का स्वरूप क्या है? छह ढाला के अनुसार, छह ढाला में एक लाइन आती ना, नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किम यारी। नौनों द्वारों द्वार से घिनकारी बहती है कि जिसे हम छूना भी पसंद नहीं करते, ऐसा ये शरीर है। बराबर, अभी कहा था ना कि उसका स्वभाव जानना, किसका? शरीर का, जगत का। तो अपने आप वैराग्य, अपने आप सम्यक की के ओर हम अग्रसर होंगे, संवेग की ओर अपने आप बढ़ने का प्रयास करेंगे। कब? कि जब हम सच्चा स्वरूप जानेंगे, किसका? अपनी आत्मा का भी और जगत का भी, काय का भी। बराबर, जो पर्याय उत्पन्न होती है उसका नाश होता है। जब दिन आरंभ होता है तब प्रभात होता है, और शाम को वही दिन अस्त हो जाता है। बराबर, शाम को धीरे धीरे वही दिन जो है वो अस्त को प्राप्त हो जाता है। यह जगत काल रूपी प्रचंड पवन के द्वारा चंचल है, यह बात बाल वृद्ध सभी जानते हैं। बराबर, यह बात कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। वो अपना वीतराग वाणी जो अपना चैनल है उसके ऊपर, उसमें एक भजन है, मेरे ख्याल से आप सबने सुने होंगे, इतने लोगों ने सुने हैं, कौन सा? जिया कब तक घूमेगा संसार में। पता है कितने लोगों ने सुना है? मतलब ये वेबसाइट वाला वीतराग विज्ञान वीतराग वाणी पर जो अपलोडेड है वो भजन कितने लोगों ने सुना है? 437,000 लोगों ने उस भजन को सुना है, इतने व्यूवर्स है उसके। उसी में एक लाइन आती है, दो लाइन, नर रे नर रे नर रे तू चेत जरा नर रे, क्यों मूड विमूड बना, कैसा पागर खर रे। क्या? नर रे नर रे नर रे तू चेत जरा नर रे। सोचो तो कि हम हैं क्या और कर क्या रहे हैं, क्या कर क्या रहे हैं और करना क्या था? क्यों मूड, मूड मतलब मूर्ख, विमूड विशेष मूर्ख, ये सब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम जैसे एक, मतलब उदाहरण आता ना अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, पंडित टोडरमल जी ने भी कई बार उदाहरण दिया है कि भाई ऐसे आचरण करता है, ऐसे मतलब मानता है पर को अपना ऐसा मानता है कि जैसे पागल हो। वो पागल वाला उदाहरण है ना, एक पागल जंगल में था और वहां पे कुछ लोग आए, बारात आई, तो क्या मानता है कि मैं इसका वो नायक हूं, राजा हूं और सब कुछ मानता है। तो इसी प्रकार तो हम भी मानते हैं। इसलिए क्या करना कि धीरे धीरे सत्संग करना। क्या करना? सत्संग। फिर सत्संग किया तो क्या करना? शुद्धाचरण, अपने आचरण में शुद्धता आनी चाहिए। शुद्धाचरण, ये लाइन लिखी है, कहां लिखी है मैं आपसे पूछूंगा, मैं चार शब्द बताऊंगा उसके बाद। सत्संग, शुद्धाचरण, और शुद्धाचरण हो कैसे? फिर श्रुत अभ्यास, और श्रुत अभ्यास हो फिर आत्म भावना। सत्संग शुद्धाचरण श्रुत अभ्यास आत्म भावना, पढ़ते ना शांति पाठ में, जब लो नहीं शिव लहूं तब लो देह यह नर पावना। सत्संग शुद्धाचरण श्रुत अभ्यास आत्म भावना, अपनी भावना को अपने को ही प्ररूपित करना है, अपने को ही करना है, अपने को ही भाना पड़ेगा ना। लिखा ही ना भावना, भावना शब्द में ही लिखा कि भाई दूसरा नहीं भाएगा। अंकल जी क्या भावना शब्द में लिखा है? भावना, तो आप खुद भावना, अब दूसरे को क्यों बोल रहे हो? बराबर, इसलिए क्या करना कि सत्संग शुद्धाचरण श्रुत अभ्यास, जिन वाणी का अभ्यास करो, बहुत मुश्किल से हम सबको बीत रागी जिनेन्द्र भगवान की ये वाणी सुनने समझने को मिल रही है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, जैसे बने वैसे श्रुत का अभ्यास करना चाहिए और श्रुत अभ्यास करते करते अपने आत्मा की आत्म भावना भाना चाहिए। बराबर, तो यहां जगत, यह जगत काल रूपी प्रचंड पवन के द्वारा चंचल है, यह बात बाल वृद्ध सभी जानते हैं। बोला था ना मैंने, मूर्ख मतलब मूढ़ और विमूढ़, मतलब जानते सब कुछ है लेकिन फिर भी उनमें ही अपनापन करते हैं। तुझे क्यों नहीं सूझती, सब जानते हैं तो तुम क्यों नहीं समझते, तो इस असार संसार में आशा रखकर भ्रमण क्यों करता है। भ्रम छोड़कर वस्तु का यथार्थ स्वरूप क्यों नहीं जानता, क्षणभंगुर वस्तुओं की वांछा क्यों करता है। इसलिए क्या करना चाहिए कि जो क्षणभंगुर वस्तुएं हैं उनमें अपनापन नहीं करना चाहिए, और जो हमेशा रहने वाली है त्रिकाल, ऐसा जीव नामक वस्तु, हम भी वस्तु है ना, क्या लिखा ना, वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, तो हम भी कौन है, जीव नामक वस्तु हैं, और हमारा भी जो स्वभाव है उसमें अपनापन करना वही क्या है, धर्म है। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें अपने स्वभाव में अपनापन करके और धर्म के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। अभी की सभा अपन यहीं पर विराम को प्राप्त करते हैं। जय जिनेन्द्र। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ। जय बोलो द्वादशांग में, जिन वाणी मात नो